मुस्कुराकर खुशी से उमंग उत्साह से कहिए नमस्ते। हाथ तो जोड़िए नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो फिर मॉर्निंग क्यों कहा? चलिए गुड इवनिंग। आपका इवनिंग गुड है? आपका इवनिंग गुड है क्यों? Why is your evening good? हाँ जी, हाँ वही बोल रहा हूँ, क्यों खुश हैं? अच्छा आप मेरे साथ हो। आप लोग इतने अच्छी तरह झूठ बोलते हो, ये समझ में आ रहा है मुझे। भाई साहब का इवनिंग तो कभी गुड रहा ही नहीं, क्योंकि आज ही मैं पहली बार इनके सामने बैठा हूँ। ठीक है, चलिए आप सबका आज के इस संध्याकालीन सत्र में, जिसका जो विषय है चॉइसेस एंड चैलेंजेस, जो हम चॉइसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, चयन, और चुनौती, चैलेंजेस मींस चुनौतियां। ठीक है, चुनौतियां और चयन के बीच के बैलेंस को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें थोड़ा सा कुछ कंडीशंस है, इससे पहले कि आज के विषय पे हम चर्चा करें, मैं कुछ बातें आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना? स्टार कंडीशंस अप्लाई, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है ना? क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सब वहां नहीं लिखी रहती है, वो तो सब कंडीशंस में लिखी रहती है। ठीक है, और जब कुछ गड़बड़ होता है तो और जब कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो कहते हैं कंडीशन में ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं भी पहले ही बता देता हूं, क्योंकि आदरणीय भाई साहब ने मेरा थोड़ा अच्छा और इम्प्रेसिव परिचय दिया है, वो सुनकर मुझे थोड़ा तनाव होने लगा कि अब जो कहा गया है उसको डिलीवर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन मैंने भारत के लोगों का, उसको कंडीशन भी समझ जाइए। मैं यहां बैठ के बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, और आप वहां बैठ के ऐसे नहीं, तीन बार बोलिए, मैंने भी तो तीन बार कहा है, बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं लयबद्ध तरीके से। लेट मी फिनिश। मैं यहां बैठ के बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, आप वहां बैठ के क्या कहा? सोते रहें सोते रहें सोते। वैसे भी ये सुनने और सोने में ज्यादा अंतर, आप मेरा अपमान कर रहे हो, कहते हैं अंतर ही नहीं है, तो फिर ना क्यों कहा पहले? तो जब मैं कहता हूँ ना नहीं क्यों कहा, तो कई लोग कहते हैं सर पहले जो उत्तर दिया था ना वो दिल से निकला था, और जो दूसरा उत्तर आ रहा है ना वो दिमाग से दे रहे हैं ताकि आपको बुरा ना लगे। अंतर है या नहीं? सुनने और सोने में अंतर है या नहीं? बहुत अंतर है। इसीलिए मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वहां बैठ के सिर्फ सुनना नहीं, सुन करके चिंतन कर उस पर थोड़ा सा अपना विवेक अपनी भावनाएं डाल करके उसको महसूस करें और देखें, फिर परखें, इवैल्यूएट करें कि इससे मेरा जीवन बेहतर हो सकता है। अभी भी बेहतर ही है, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट कैन आई मेक इट स्टिल मोर ब्यूटिफुल, स्टिल मोर प्लेजेंट, स्टिल मोर मीनिंगफुल। अगर हम ऐसा कर सकते हैं और यहाँ की जो बातें सुन के समझ कर वो और अच्छा हो रहा है तो स्वीकार करने में कोई हर्जा ही नहीं है। अगर फायदे वाली बात है तो फिर कर सकते हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति बताता हूँ, विशेष भारत के लोगों की। 5 रुपए का पेन भी खरीदना होगा ना, ऐसे ही नहीं खरीदते, उसको स्क्रिबलिंग पैड में स्क्रिबल करके जरूर देखेंगे करता है नहीं है काम। 5 रुपीज इट्स नॉट इवन वर्थ। और यहां तो इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं और उसको हम स्क्रिबल ही ना करें। क्योंकि मैंने भारत के लोगों की दूसरी बड़ी विशेषता देखी है, मैं भी भारतीय हूं और मुझे गर्व है भारतीय होने का। जब मैं कहता हूं मैं यहां बैठ के बोलता रहूं, सामने वाले कहते हैं हम बैठ के सुनते रहें, तो स्टार कंडीशन नंबर 2 भारत के लोगों की विशेषता है, हम सुनते सब का है। आगे कमाल है आप लोगों का। भाई साहब ताली किसके लिए बजाया? मेरे लिए। आप खुशी से बजाया लेकिन किसके लिए? अच्छा कंडीशन के लिए बजाया, देन इट इज ओके। अब जब करना अपना ही है तो फिर यहाँ आकर इतना मेहनत करके 3 दिन बिताकर हमारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज की बात सुनकर फिर फायदा ही नहीं है, क्योंकि करना तो हमको वही है जो आज तक करते आए हैं। तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, ठीक है, वही मन का अगर करना है तो देन दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, ठीक है। तीसरी बात, मैंने तीसरी विशेषता भारत के लोगों की देखी है, जब भी मैं कोई आइडिया या कोई कंसेप्ट या कोई जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आज देखेंगे समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे, मान लीजिए मैं यहां मंच से कहता हूं गुस्सा नहीं करना चाहिए, मान लीजिए, मैं पूछता नहीं हूं आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई मेक अ स्टेटमेंट कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो पता है मैंने भारत के लोगों की विशेषता देखी है, दे रिस्पॉन्ड इन 2 वेज, एक एक्सटर्नल रिस्पॉन्स और एक इंटरनल रिस्पॉन्स। एक्सटर्नल रिस्पॉन्स भारत के लोग पता है मुझे कैसे देते हैं, जब मैं कहता हूं गुस्सा नहीं करना चाहिए तो पहले बहनों के बारे में बताऊं या भाइयों के बारे में बताऊं? चलो भाइयों का पहले बता देता हूँ, ठीक है, बहनें तो हमारी वैसे भी इतनी अच्छी होती हैं। बोले कोई बात नहीं गिरीश भाई, पहले भाइयों का बता दो। तो हमारे जो भाई होते हैं वो 2 प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, माताएं बहनें भी 2 प्रकार से रिस्पॉन्ड करती हैं। जब मैं कहता हूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए तो हमारे भाई एक्सटर्नली पता है कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? और अंदर ही अंदर पता है कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? इसको क्या पता, ये CRPF में आके एक दिन बिता दे तो पता चलेगा। हमारी ड्यूटी करके बता दे, हमारी स्टेट पुलिस में आके काम कर ले, हमारे भारतीय नौसेना में आके, हमारे डिपार्टमेंट में आके काम कर। आप लोग है ना हर गलत बात पे ही ताली ज्यादा बजाते हो, ठीक है ना? आप बड़े पॉजिटिव हो, ठीक है ना? दिस इज इंटरेस्टिंग। और हमारी माताएं पता कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? अगर मैं कहता हूं गुस्सा नहीं करना चाहिए तो माताएं और बाजू वाले को देख के बोलते हैं मतलब वो दूसरे को भी बता रहे, देख कैसे गलत बोल रहा है, ठीक है. दे डोंट कन्फाइन देमसेल्फ विद एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, दे शेयर इट विद द एक्सटर्नल अदर पर्सन ऑल्सो. और अंदर पता है क्या सोचती है मेरे बारे में, ऊपर ऊपर से तो और अंदर सोचती है मेरे बारे में टकलू, तू हमारे घर में आ जा एक दिन, हमारी सासू माँ के दर्शन मात्र से तेरी शांति भंग हो जाएगी, ठीक है ना. और तुम कहता है यहाँ गुस्सा नहीं करते, तुम हमारे दो छोटे बच्चे को आधा घंटा हैंडल करके बता दे, तुम्हारे बाकी सिर के बाल उड़ जाएंगे, ठीक है. और तुम यहाँ आकर हमको डायलॉग पर महावाक्य सुना रहे हो कि गुस्सा नहीं करो. अरे पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है. प्रैक्टिकल जीवन में आपके ये जो ज्ञान की बातें हैं, दिस इज नॉट थियोरिटिकली इट मेक सेंस. हाँ ठीक है, शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना. किताबों में बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के. आप जैसी संस्था में आकर श्वेत वस्त्रधारी लोगों के मुखारविंद जब हम ये सुनते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हमें भी लगता है हाँ हाँ गुस्सा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है. क्यों? क्योंकि ओम शांति वालों को संभव हो सकता है, क्योंकि आपको तो बस आश्रम में रहना है, कोई काम धंधा तो है नहीं, नौकरी तो करनी नहीं है, आपको अपने जो सुपीरियर है उनका हैंडल तो करना नहीं है, प्रेशर, बच्चों को संभालना नहीं है, घर को संभालना नहीं है, पैसे कमाना नहीं है, ईएमआई भरना नहीं है, समाज में रहना नहीं है, भविष्य की आपको कोई चिंता नहीं है, बस आपको तो ओम शांति आश्रम में रहना है. और बस क्या करना है आपको, ओम शांति ओम शांति ओम शांति. ठीक कह रहा हूं ना? नहीं, अरे क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छे. तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, अगर मैं कुछ बात यहां से कहूं जो आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लगता तो बहुत अच्छा आप जो कह रहे हो, ऐसा होना भी चाहिए बट नॉट पॉसिबल, तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, तुरंत हाथ ऊपर उठाकर मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, अब्रप्टली इंटरप्ट कर सकते हैं, और अपने अभिप्राय आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. करेंगे? नहीं तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना. सुनते तो हम सबका है, और करना अभी तक वही, करना आगे भी वही है जो आज तक किया है, तो फिर यहां आकर के क्या फायदा. ठीक है, तो अपने विचारों को, अपने मान्यताओं को, कंसेप्ट्स को, आइडियाज को, बिलीफ सिस्टम को स्क्रूटनाइज करेंगे. मैं तो आपके हर एक बिलीफ सिस्टम को अच्छी तरह लेफ्ट राइट सेंटर उसको परखूंगा. मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप मेरे भी हर कंसेप्ट को अच्छी तरह स्क्रूटनाइज करना. उद्देश्य आप बड़े, मैं बड़ा, मैं करेक्ट, आप करेक्ट नहीं है. उद्देश्य है वो बिलीफ सिस्टम जिससे मेरे को फायदा होना चाहिए, बस उतना मुझे देखना है. और अगर कोई चीज मुझे फायदा करती है, उपयोगी है, तो क्यों छोड़ू. ऐसे ही है ना, which is beneficial we don't leave it, we will accept it. शुरू करें. आज का जो विषय है वो है choices and challenges. मुझे ज्यादा खुशी होती, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भाई साहब ने मेरा परिचय भी दिया, आपका यहाँ पे स्वागत भी किया, और हमने ये कार्यक्रम भी शुरू किया, परमात्मा को भी याद किया. लेकिन जनरली मैंने देखा है, माइक मेरे पास आने से पहले हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी होते हैं, जैसे भाई साहब ने हमारा परिचय दिया, वो एक रिक्वेस्ट ऑडियंस से जरूर करते हैं जो शायद भाई साहब भूल गए. मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर वो भूल भी जाएंगे तो फाइनली माइक मेरे पास ही आने वाला, मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर ही सकता हूं. ठीक है, आप बता सकते हैं क्या रिक्वेस्ट होता होगा ऐसे कार्यक्रमों में. हाँ करेक्ट, आप लोग बहुत अच्छे. भाई साहब को ऐसा कहना था, वो मिस कर गए, बट दैट्स ओके. उनको ऐसा कहना था कि भाइयों और बहनों, कृपया करके अगले एक घंटे के लिए अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में या फिर स्विच्ड ऑफ मोड में कृपया करके रखें, एक मिनट. अभी कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनको ऐसा कहना था, आपने तो तुरंत निकाल के करना भी शुरू कर दिया. आप इतने अच्छे हो, इतना जिंदगी में थोड़ा और कर लेते थे ना तो कहीं से कहीं पहुंच जाते थे इशारों की भाषा में, ठीक है ना. मेरे को आपसे इतना पॉजिटिविटी मिल रहा है, मतलब जब दुख की बात कहता हूं ना तो ताली बजाकर आप उसका निवारण कर रहे हो, ठीक है ना. बट यू आर वेरी पॉजिटिव ऑडियंस. ठीक है, मैं तो ये कह रहा था कि भाई साहब को कहना था ऐसे, कोई बात नहीं, मैं आपको कह देता हूँ, कृपया करके अब करना जो मैं कहने वाला हूँ, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में ना रखें, उसको स्विच ऑफ मोड में ना रखें, लेट इट बी ऑन एन एक्टिव मोड। कुछ लोग तो ऐसे मुझे घूर के देख रहे हैं, अरे ये नॉर्मल नहीं लगता है, ठीक है ना, ये एकदम उल्टा ही लग रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। सब तो कहते हैं साइलेंट कर देंगे, और ये भाई कहता है भैया एक्टिव रखो, बजने दो उसको। सवाल पूछूं, मैं सवाल इसीलिए आपसे पूछूंगा ताकि हमारा ये थोड़ा सा एक्टिव हो और उस पर हम चिंतन करें। सवाल का अर्थ आपको किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना या आपका सम्मान नहीं करना, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट टू इन्वॉल्व ईच वन ऑफ यू सो दैट वी इवॉल्व द डिस्कशन, ठीक है। मेरा एक और छोटा सा अनुरोध है, मेरी कोई भी बात आप स्वीकार नहीं करना, प्लीज डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग व्हाट कंसेप्ट्स, आप उसको अच्छी तरीके से परखना, ठीक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप योर सेल फोन ऑन एक्टिव मोड, डोंट कीप इट ऑन अ साइलेंट मोड। जनरली सवाल पूछता हूं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसको साइलेंट मोड में रखो? हां जी, उससे डिस्टर्बेंस होता है। क्वेश्चन पूछूं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मनुष्य ने बनाया इसको, इसका निर्माण मनुष्य ने मनुष्य के फायदे के लिए किया या डिस्टर्बेंस के लिए? अभी तो आप कह रहे हो डिस्टर्बेंस, अभी कहते हो फायदा, फायदे के लिए या डिस्टर्बेंस के लिए? अभी के लिए डिस्टर्बेंस। तो मैन्युफैक्चरर को ये भी बताना चाहिए था ना, अभी के लिए डिस्टर्बेंस, इस समय के लिए फायदा। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन, 100% कॉन्सेंट्रेशन देने के लिए इसका निर्माण किया, इसीलिए साइलेंट मोड पे करना। तो मेरा प्रश्न ये है, डिस्टर्बेंस कहाँ है? हाँ, भले किसी का भी डिस्टर्बेंस हो, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, डिस्टर्बेंस है कहाँ, चुनौती है कहाँ, चैलेंज है कहाँ? हाँ जी, जब आप मेरी बात पर अटेंशन नहीं दे पाते हैं, है ना, मोबाइल किसी के बजने से, तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपके मन में है ना। तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, अगले एक घंटे के लिए कृपया करके अपने मन को साइलेंट मोड में करें। मतलब प्रॉब्लम इधर और दोषारोपण इधर, कमाल है। जरा सोचिए, मुझे याद आता है मैं निजाम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, एक निजाम मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मैं डॉक्टर्स का प्रोग्राम, जैसे आप सुरक्षा बल से संबंधित हैं, द आर्म्ड फोर्सेस, वैसे ही दे वर ऑल डॉक्टर्स, और मेरा जो विषय था दैट वाज द पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ योर बॉडी, पावर ऑफ योर इंटेलेक्ट, पावर ऑफ योर पोजिशन, पावर ऑफ योर एक्सपीरियंस, पावर ऑफ योर क्वालिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे पावर है, पावर ऑफ योर स्टेटस, पावर ऑफ योर नेटवर्क, जान पहचान, मेरा पहचान प्रधानमंत्री जी से पावर बढ़ जाता है, ऐसे ही द पावर ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ साइंस, ऐसे ही पावर ऑफ साइलेंस। तो वो था विषय, और मैंने तो शुरू कर दिया था बात करने के लिए, एक किसी डॉक्टर भाई का गलती से फोन बजा सभा में, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, उनको लगा कि मैंने साइलेंट मोड करके आए, बट इट स्टार्टेड रिंगिंग इन दी ऑडियंस। तो तुरंत वो मास्टर ऑफ सेरेमनी जो भाई थे, वो तुरंत स्टेज में, ही टुक द माइक फ्रॉम मी, बोला सर एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, मैंने कहा गो अहेड, उन्होंने माइक लेके बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने अनाउंस किया, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज का हमारा जो विषय है दैट इज द पावर ऑफ साइलेंस एंड कीप योर फोन ऑन अ साइलेंट मोड। तब मेरे को ये आइडिया आया, और मैंने पहली बार लाइफ में ये एग्जाम्पल दिया कि मोबाइल में से जो आवाज निकलता है वो तो संगीत है, दैट इज म्यूजिक, आजकल तो वैरायटी म्यूजिक हो गए। मैं जब छोटा था ना, हमारे घर पे जब टेलीफोन होता था ना, एक ही रिंगटोन होता था और बड़ा बोरिंग होता था, टर्न टर्न टर्न। आज यहाँ अगर 100 लोग बैठे हैं तो यू मे हैव 100 डिफरेंट वैरायटी ऑफ म्यूजिक। किसी का भक्ति संगीत, किसी का हनुमान चालीसा, किसी का हॉलीवुड, किसी का बॉलीवुड, किसी का रीजनल, किसी का इंस्ट्रूमेंटल, यस और नो, किसी का हिंदी फिल्म सॉन्ग। इसमें से जो आवाज निकल रहा है वो तो संगीत है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस इधर है। तो एक डॉक्टर ने मुझे प्रश्न पूछा, ही वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ही रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, मिस्टर गिरीश मुझे अच्छी लग रही है आप जो बात कर रहे हो, एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैंने कहा थैंक यू सर। उन्होंने कहा बस एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा इस सेल फोन में बहुत सारे मोड हैं, एक्टिव मोड, साइलेंट मोड, वाइब्रेटरी मोड, फ्लाइट मोड, मीटिंग मोड, आने वाले जमाने में शायद और 8-10 मोड बना देगा मनुष्य, स्लीपिंग मोड। यस, मैंने कहा करेक्ट। उन्होंने कहा गिरीश भाई इधर पे भी बहुत सारे मोड हैं, गुस्सा मोड, दुखी मोड, किसी की सफलता को देख के जलने वाला मोड, ईर्ष्या मोड, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, हताश मोड, हेल्पलेस मोड, होपलेस मोड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मोड, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मोड। यस और नो? जोर से नहीं बोलते आप लोग, क्या कॉन्फिडेंस है वाह, हर गलत बात में आपका कॉन्फिडेंस और सब बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने कहा करेक्ट सर। उन्होंने कहा गिरीश क्वेश्चन, मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा मेरा जो ग्रैंडसन है ना, पोता, वो मेरे को बोलता है दादू मैं तुम्हारा सेलफोन को साइलेंट कर दूं, ही वॉन्ट्स टू प्ले, मैं कुछ नहीं कर सकता, वही सब मेरे को करके देगा। दादू आपका यूट्यूब लगा के दे दूं, दादू आपको एक्टिव मोड में कर दूं, दादू आपका सॉन्ग लगा के दे दूं, क्योंकि उसको खेलना है इसके साथ, ही वॉन्ट, इसमें करने में उसको आनंद है। तो कहता है दादू आपका फोन को मैं साइलेंट कर दूं। मैंने कहा कर दे। सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा 2 सेकेंड में इस सेलफोन को साइलेंट में कर देता है, इसको स्विच ऑन करता है, ड्रॉप डाउन करता है, म्यूट बटन दबाता है, एंड दिस फोन इज पेरिनियली परमानेंटली, इसमें से चू तक आवाज नहीं आएगा, आप कितना भी फोन कर लो। एंड दैट्स द टेक्नोलॉजी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट सर। उन्होंने कहा गिरीश भाई एक सवाल है। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा यहां पर कौन सा बटन दबाऊं ताकि अगले 1 घंटे के लिए मेरा मन साइलेंट हो जाए। वहां टेक्नोलॉजी इज प्रीटी ईजी, यहां पे टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। मे बी हमने एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी पर बहुत तरक्की कर ली, यू नेम इट, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स, आप नाम लीजिए ना, अध्ययन शास्त्र जिसमें मनुष्य ने अध्ययन किया, दिमाग लगाया और कहां से कहां मनुष्य के स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन एक अध्ययन, एक फील्ड, आंतरिक टेक्नोलॉजी, इसमें हम बिछड़ गए, आउटडेटेड, रिडंडेंट, ऑब्सोलीट। और मनुष्य पता है सबसे दर्द वाली बात यह कहता है सर मन को साइलेंट करना ही तो सबसे डिफिकल्ट है। अरे खुद के साथ 40-45-80 साल मैंने जी लिया और इसको यूज करते करते सिर्फ 6 महीना हुआ है। लुक एट द कन्वीनियंस एंड लुक एट द चैलेंजेस। तो मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, ये जो मन को साइलेंट करना है ना, इसी के लिए आपको यहां निमंत्रण दिया है। सारा प्रॉब्लम इधर ही है। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं उसको सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप लोगों को टेंशन होता है क्या लाइफ में? बहुत होता है। वो पूरा डिपार्टमेंट का सुना रहे हैं, ठीक है ना, क्या बुलंदी के साथ कहा, बहुत होता है, ठीक है, टू गुड। जिनको होता है टेंशन वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। लाइफ में जिनको टेंशन होता है, क्या बात है, टू गुड। जिनको टेंशन नहीं होता है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। ओके, 3-4 लोग हैं, गुड। जब मैं ये दूसरा प्रश्न पूछता हूँ ना, वो हाथ ऊपर उठाएं जिनको टेंशन नहीं होता, तो मैक्सिमम लोग है ना आजू बाजू देखते कौन है, कौन है, ये कैसे बच गया, यहाँ हमारी हालत गंभीर है और ये बेचारा इतना मुक्त अवस्था में, इतनी जलन होती है ना उसको देख करके। चलो कोई बात है, फिर भी यहाँ पे चार पांच लोग, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन लोगों को मिलना जिनके जीवन में तनाव ही नहीं है। तीसरा प्रश्न, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है कृपया करके हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है, ये कौन सा कैटेगरी है? थैंक गॉड, कभी कभी तो मुझे ये थर्ड कैटेगरी सबसे खतरनाक नजर आता है। ठीक, पता है क्यों? हो सकता है ये थर्ड कैटेगरी इस कारण से हाथ नहीं उठा रहे हैं कि उनको हाथ ऊपर उठाने में ही टेंशन हो रहा है। बोला छोड़ यार, काय को हाथ ऊपर उठाए, वो भी हो सकता है, आई डोंट नो, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। दूसरा कारण, ये तीसरा कैटेगरी का ये अभिप्राय ये हो सकता है कि वो मुझसे उल्टा पूछ रहे हैं, तू बता हमको टेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमको क्या पता, हम तो यही सब जानने के लिए इधर आए हैं, हमको क्यों इस प्रोग्राम में बुलाया है। बहुत अच्छा, ठीक है, गुड। वैसे मुझे याद आता है, मैं भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी का कोचिन में, सदर्न नेवल कमांड में मैं कार्यक्रम, आज से काफी वर्ष पहले की बात है, हम प्रोग्राम कर रहे थे वहां, उन्होंने दो दिन का वेरी सीनियर ऑफिसर्स के लिए इराडिकेशन ऑफ स्ट्रेस के ऊपर कार्यक्रम रखा था। तो जैसे आप, मेरा यूजुअल प्रैक्टिस है, मैं सबसे बहुत सीनियर 15-20 ऑफिसर्स थे, बहुत सीनियर पद में थे वो, तो मैंने आपसे जैसे प्रश्न पूछा वैसे उनको भी पूछा, आपको टेंशन होता है क्या? दे ऑल रेज, एंड उन्होंने कहा इसीलिए तो आए हैं, एंड उनको सेल्फ नॉमिनेशन था, उनको इतना टेंशन था कि वो बोले भैया छुड़ाओ हमको टेंशन से। मैंने कहा सॉरी सर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन। बोला ओके। फिर मेरा दूसरा नॉर्मल क्वेश्चन, आप में से जिनको टेंशन नहीं होता वो हाथों पर उठा, देयर वाज वन ऑफिसर, ही रेज्ड हैंड, और मुझे बड़ा आनंद आया कि एटलीस्ट एक तो है जिनको टेंशन नहीं होता, उतने कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा सर प्लीज इधर आइए, और आप तो भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं, आप तो भारतीय नौसेना का कल्चर जानते हैं, कैसे काम होता है नहीं होता है, खींचातानी होती है, पॉलिटिक्स होता है, कैसे ऊपर नीचे गड़बड़ अंदर बाहर, यू नो एवरीथिंग इन एंड आउट अबाउट द इंडियन नेवी। ही सेड यस। मैंने कहा सर मैं तो भारतीय नौसेना में कभी सेवा नहीं किया, मैं तो ब्रह्मा कुमारी से आया हूं, आप 5 मिनट में इनको ये बताइए कि इनके बीच रहते हुए, इसी कल्चर में, इसी एनवायरमेंट में रहते हो, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, दैट वुड बी मोर मीनिंगफुल, और अच्छी तरह लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उन्होंने कहा करेक्ट। मैंने कहा सर प्लीज इधर आइए। ही वॉक्ड रॉयली इनके गेम एंड स्टूड नेक्स्ट टू मी। मैंने उनको कहा सर आपका नाम बताइए, आपका पोस्ट क्या है, आप कब से कोचिन में, आप भारत के कौन से प्रांत में रहते हैं। थोड़ा सा आई वॉज एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज उनके साथ बात कर रहा था, जब मैं उनके साथ बात कर रहा था उनके दो साथी जो थे सभा में जो बैठे हुए थे इनको देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। मैंने इनको ऊपर से नीचे तक देखा, हंसने जैसे तो कोई बात ही नहीं नजर आ रही थी। मैंने कहा सर आपको बुरा नहीं लगे तो बात पूछूं? उन्होंने कहा या गिरीश गो अहेड। मैंने कहा सर ये बताइए आपको देखकर आपके दो साथी योर फेलो कलीग्स वो इतना हंस क्यों रहे? जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा उनको आया गुस्सा, वो आंखें बड़ी की और आवाज थोड़ा तेज करके उन्होंने कहा मिस्टर गिरीश सवाल वो पूछ रहे हैं, हंस वो रहे हैं और सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा सर ये भी करेक्ट है। मैंने कहा सर मैं थोड़ा टेंशन में हूं, जरूरी नहीं है हमेशा सुनने वाले ही टेंशन में हो, कभी कभी सुनाने वाले भी टेंशन में आ जाते हैं। मैंने कहा सर सॉरी इट वॉज अ राइट क्वेश्चन बट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द रॉन्ग पर्सन। मैंने कहा एक मिनट सर मैं उनसे ही पूछ लू, जो हंस रहे वो ही बतावे। मैंने उन दोनों उनके साथियों को कहा प्लीज आप हंसना बंद करिए, पहले ये बताइए वाई आर यू लाफिंग एट हिम। उनमें से उनके एक साथी ने इतना वंडरफुल जवाब दिया जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूं। उन्होंने कहा मिस्टर गिरीश जो महानुभाव द जेंटलमैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, जो महानुभाव आपके बाजू में खड़ा है वो टेंशन लेता नहीं है। आप सब भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं क्या? आपको कैसे पता चला भारतीय नौसेना का कल्चर क्या? ओ माय गॉड,
पता बहन जी क्या बोल रही है, सिर्फ उनका कल्चर नहीं है, सबका है। ठीक है ना? क्या कॉन्फिडेंस, टू गुड। आप लोग टेंशन लेते हो कि देते हो? क्या लुक एट द कॉन्फिडेंस, बोलते सर हम दोनों में एक्सपर्ट हैं, जब मर्जी ले लिया जब मर्जी दे दिया। पता है ये तनाव का हम लेन देन कैसे करते हैं? मुझे याद आता है मैं अभी मई मास में कश्मीर में इंडियन आर्मी का हम प्रोग्राम करने गए, एक हफ्ता था मैं वहां पर बारामुल्ला और ऐसे दो तीन जगह पर। वहां पर हमने उनके सैनिकों को पूछा, ऑफिसर्स भी थे इंडियन आर्मी का, मैंने उनको पूछा ये जो आतंकवाद की समस्या है इसको मैनेज करना है या खत्म करना है, आप बताइए, खत्म करना चाहिए या उसको मैनेज करना है? खत्म करना चाहिए। ये स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए या खत्म करना चाहिए? क्योंकि कई लोग है ना बहुत अच्छा अच्छा डायलॉग बोलते हैं, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू विल हैव टू लिव विद इट, आई होप दे डोंट मीन बाय देयर वाइव्स। आप है ना किसी के दुख पर ऐसे मत हंसिए, ठीक है ना? तो कुछ लोग बोलते हैं हम किसी और पे नहीं, हम पर ही हंस रहे हैं, हम ही यहां विक्टिम बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जो बुरी चीज होती है ना उसको मैनेज नहीं करना होता है, उसको तो खत्म करना होता है। यहां से एटलीस्ट ये क्लैरिटी लेकर जाना दैट एंगर शुड नॉट बी मैनेज्ड। अगर मान लो यहां लाइट चली जाए और पिच डार्क, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, डू यू मैनेज डार्कनेस और यू रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट? हाउ डू यू मैनेज डार्कनेस? हां जी, रिमूव, एलिमिनेट, उन्मूलन करना है, खत्म करना है हमको। और ये जो चुनौतियां है ना, इस चुनौतियों का कारण को हमको समझना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से वेरी सिंपल है, हमारा सब रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, और ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा, मेरा पहला रिक्वेस्ट आप, सॉरी फोर्थ रिक्वेस्ट आपकी, मेरी कोई भी बात को आपको स्वीकार नहीं करना है, प्लीज क्वेश्चन, हर छोटी छोटी बात को आप पकड़ सकते हैं और मैं बहुत अच्छी तरह पकड़वाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम उन कंसेप्ट से विच इज मेकिंग आर लाइफ मोर चैलेंजिंग। क्योंकि हमने तो बहुत अच्छी तरह दोषारोपण इसको दे दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि डिस्टर्बेंस कहां पर है। यस, वैसे ही तनाव को खत्म करना है। पता है तनाव का लेन देन कैसे करते हैं हम लोग? हस्बैंड ऑफिस से, सुरक्षा बल कर्मी ऑफिस का पूरा टेंशन लेके घर पे आता है। ये जो टेंशन का लेन देन पता है कैसे होता है? हम अपने उच्च अधिकारी से लेते हैं, और जब वो देते हैं तो पता है हम स्वीकार कैसे करते हैं? हाथ नीचे करके, सर नीचे, यस हाँ हाँ सर हो जाएगा बिल्कुल, हाँ हाँ ओके, यस डन। जिसको मैं हिंदी में कहता हूं आदेश अनुसार, बाय ऑर्डर। सुरक्षा बलों में आदेश अनुसार बहुत होता है, आदेश अनुसार सावधान। आपके लैंग्वेज में मैं बात करता हूं ना तो कई लोगों को ना छू रहा है बातें, ठीक है ना, इसीलिए ताली भी आ रहा है। आदेश अनुसार सब कुछ इज बाय ऑर्डर, मेरा प्रॉब्लम है ये आदेश अनुसार से, विद ड्यू रिस्पेक्ट। संसार में आदेश अनुसार, आप आदेश अनुसार तो एक शेर भी सर्कस में कूद जाएगा, लेकिन आदेश अनुसार में जिंदगी चली जाएगी। इंग्लिश में कहावत है वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, आपके लिए वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन वर्किंग। आजकल लिविंग भी नहीं है, वी आर तो वर्किंग वुमन, कमाल है, कब से जीवित महिला वर्किंग महिला हो गई ये समझ में नहीं आया मुझे। वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, वेयर नॉलेज इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। जानकारी के चक्कर में ज्ञान गायब, जीने के चक्कर में जीवन गायब। किसी को पूछो कैसे चल रही है जीवन, तो बोलता कट रहा है। काटो भैया तुम सब्जी भाजी को जैसे किचन में काटते हो ना। वी हैव डिग्रेडेड ह्यूमन लाइफ टू सच अ लो एक्सटेंट, और मुझे बहुत तकलीफ होती है उस बात को।
और पता है हम अपने साहब से लेते जरूर है टेंशन, खुशखबरी बताता हूं, रखते नहीं है अपने पास। क्या बात है, किसको देते हैं? नीचे वाले को सिर्फ देते नहीं है सर, सूत समेत देते विद इंटरेस्ट, अपना रोना अपना फ्रस्ट्रेशन वो भी उसमें ऐड करके देते, नॉट ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, इट इज कपल्ड अप विद द इंटरेस्ट अमाउंट। हस्बैंड ऑफिस का पूरा टेंशन, परेशानी, दिक्कत, काम हुआ नहीं हुआ, किसी और की गलती में डांट मुझे मिला, ये सब लेकर के घर पे आता है। घर पे आते ही साथ थका हारा घर पे आकर के पत्नी को कहता है कब चाय पिला, आज का दिन ही खराब था। और पता है पत्नी 5 मिनट लेट करती, किसी और काम में बिजी थी, 5 मिनट लेट करती है तो भाई साहब तो भड़क जाते हैं और उसको चिल्ला के कहते कितना देर से कह रहा है कब चाय नहीं पिला सकती है तू। तुरंत पत्नी किचन में भाग कर चाय बनाते बनाते पता है पति के बारे में क्या सोचती है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे इसीलिए शादी किया था क्या कि तुम कहीं और का फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर डालो। 7 फेरे लेते वक्त वो पंडित ने बहुत सारे क्या बोलते मंत्र उच्चारण किया था, लुक व्हाट इज ही अप टू नाउ। अब मैडम ने तो अननेसेसरीली सुन लिया, उनका तो समय अच्छा चल रहा था, पति ने तो पूरा उनको ट्रांसफर कर दिया। मैडम आधा घंटे से छोटे बच्चे को कह रही थी टीवी बंद करके पढ़ ले, टीवी बंद करके पढ़ ले, कल तेरी परीक्षा है। और छोटू को तो टीवी देखने में मजा आ रहा था, वो तो मम्मी की नहीं सुन रहा था। आधा घंटे के बाद मम्मी जाती है छोटू के पास, सीधे एक लाफा खींच के गाल पे पट करके मारती है और चिल्ला के कहती है पढ़ कितना देर से तेरे को पढ़ समझ में नहीं आता है क्या। छोटू झापड़ खाकर पता क्या सोचता, अरे फालतू में मारती हो, प्यार से भी तो बोल सकती थी, ठीक है। आई मीन दिस इज नॉट डन, देयर इज द प्रॉपर वे टू हैंडल एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। छोटू वो भी अपने पास नहीं रखता है उसके घर, ये तो विधि विधान है ना, यही तो हमने सीखा है जिंदगी में, सब उल्टा। और छोटू के घर में कुत्ते का बच्चा है, पेट एनिमल, ठीक है, उसको जाके एक लात मारता है। मुझे नहीं पता कुत्ते ऐसे सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, बट बता देता मे बी दे मे थिंक लाइक दिस। कुत्ता सोचता होगा द पेट डॉग वुड थिंक हे इंसान, तुम अपना तनाव अपनी प्रजाति तक ही नहीं सीमित रख सकते, अरे दूसरी जाति को काय को ट्रांसफर कर रहे हो। आई मीन दिस इज नॉट डन, एटलीस्ट तुम लेन देन करो, अपने तक सीमित रखो। ताली किसके लिए बजाया? क्या माय गॉड, बोलता डॉग के लिए बजाया, ठीक है। आप कितने कंसिडरेट हैं, ओ माय गॉड, दूसरी प्रजाति पर भी आपकी भावनाएं कितनी अच्छी। एंड ये जो डॉगी है ना, ये इंसानों के बीच रहते रहते उसकी भी मान्यता इंसान जैसी हो गई है, वो अपने पास नहीं रखता टेंशन को। वो जाकर बाप को हस्बैंड को करके काट लेता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई बचा ही नहीं है वहां पर, ठीक है ना। सर्कल कंप्लीट, ये लेन देन करने से अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं घूमकर मेरे पास ही आ रहा है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपने कहा आपको टेंशन होता है, बहुत दिक्कत होती है, डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या कारण है आपके प्रॉब्लम के, चैलेंजेस के, तनाव के, अगर मैं आपको पूछूं बताइए। आपने कहा आपको बहुत टेंशन है, साहब ने तो थोड़ा आवाज से भी कहा बहुत टेंशन है, बताइए एक एक कारण बताइए टेंशन का। जी मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था, ये मम्मी लैंग्वेज का ना, मम्मियों के लैंग्वेज बहुत फैंटास्टिक है। भारत में माताएं पता है टेंशन का कारण, उसमें भी एक विशेष है जिसको हम कहते हैं अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। और माँ के लैंग्वेज में कहता हूं जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं होता है, तो मम्मी का पारा चढ़ जाता है। पप्पा लोगों का भी हो सकता है, टिपिकली इट्स अ मम्मीज एक्सपेक्टेशन। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जैसे मम्मी चाहे, जैसा आप चाहें, वैसा ही हमेशा क्यों हो? कौन सा नियम है कि जैसा आप चाहें वैसा ही हो? कोई जबरदस्ती है क्या? Who said that whatever you wish it should happen? प्लीज क्वेश्चन दिस बिलीफ। यही सब प्रॉब्लम है और हमको समझ ही नहीं आता कि यही सब चैलेंजेस हैं। और क्योंकि यही सब चैलेंजेस हैं, उस गलत चैलेंजेस के कारण हमारे पास लगता है अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मरो, काम करो, जिंदगी ऐसे ही बीतेगी और कोई ऑप्शन। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो विपरीत परिस्थितियों में भी ताली बजाते हैं, ठीक है ना, रोते तो है ही नहीं है, घबराते तो है ही नहीं है, परेशान तो हो ही नहीं होते। सवाल पूछो, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे आप हमेशा करते हो? रिपीट, जैसे दूसरे चाहते हो, कोई भी हो सकता है, आपसे बड़े छोटे, घर वाले, बाहर वाले, कार्यस्थल वाले, एनीबडी, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे आप हमेशा करते हो? नहीं, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा हमेशा आप करो। आपको नहीं लगता ये हिटलर की मेंटालिटी है? क्योंकि जब दूसरे जैसा चाहते हैं उस वक्त मैं सोचूंगा, देखूंगा, करता हूं, थोड़ी देर के बाद करूंगा, कमाल है। लेकिन जब मैं कहूं तो तुरंत के तुरंत हो जाए। मैं अभी एक सुरक्षा बल का प्रोग्राम करके कल रात को ही आया, वहां एक सबऑर्डिनेट मुझे कह रहा था, मैंने कहा आपके टेंशन का कारण, तो उन्होंने एक ही शब्द में कहा, अभी अभी काम हो जाना चाहिए। बोला हमारे साहब लोगों का ना ये पेटेंट डायलॉग है, अभी के अभी लग रहा, अभी अभी हो जाना चाहिए। और ये अभी अभी में ना पता है वो उसके जो नीचे वाला वो कहता है यस सर, हाँ सर, प्रथम सर, और जाता है। अब उसको इस बात का टेंशन कि अभी अभी हो नहीं सकता है, इट विल टेक टाइम, लेकिन बोल के क्या आया है, आदेश अनुसार, हाँ सर, करता हूं सर। हाँ, वो पूरा परेशानी लेकर के जाता है, उसके दो चार और खली गए, बोलता अभी अभी ढूंढ के बता, वो अपने तक भी नहीं रखता है, वो अपने साथी पर डालता है। अभी अभी, अभी अभी कैसे होगा चीजें? मैं जैसे चाहता हूं वैसे ही होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। आपको मैं एक उल्टा उदाहरण दूं? मैं उल्टा उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि उल्टा बात सही समझ में आता है। क्योंकि जब मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल देता हूं ना, तो सामने वाला कहता है उल्टा बोल रहा है तू, क्योंकि सामने वाला है ना सिर नीचे और पांव ऊपर करके खड़ा है और मुझे कहता है तुम उल्टा सुना रहा है, तो मैं भी ना सिर नीचे करके उसको उल्टा उदाहरण देता हूं ना, तब वो बता अभी करेक्ट बोल रहा है क्योंकि उसको अभी सब सही दिख नजर आ रहा है। उल्टों को उल्टा बताओ तो सीधा नजर आता है, उल्टे को सही बताओ तो बोलता बकवास कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। उल्टा उदाहरण दूं, कल रात को मैं 1 बजे पहुंचा यहां ज्ञान सरोवर में, और फिर सुबह आप जानते हैं हम जल्दी उठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर मैं थोड़ा पांडव भवन भी गया, फिर ये कार्यक्रम भी करना था, तो मेरा नींद थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ। आज रात को 10 बजे सोने के पहले मैं सूर्य देव को एक पत्र लिखूंगा, ठीक है, और कहूंगा भैया तुम 2 घंटे बाद उगना सुबह, क्योंकि मैं थोड़ा 2 घंटे ज्यादा सोना चाहता हूं, ठीक रहेगा? अब समझ में आ रहा है, बोला ऐसे थोड़ी ना होता है, सूर्य आपके आदेश अनुसार, आप कितना भी उल्टा खड़े हो जाओ, कितने भी दिग्गज हो, कितने भी महापुरुष हो, सॉरी फ्रेंड्स, इट विल नॉट हैपन एज पर योर विश, इट्स अ वियर्ड विश, इट इज अ नॉनसेंस विश। ऐसे ही शायद हमारा भी सब नॉनसेंस विश है, अपेक्षाएं लेकर के, वो सामने वाला करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परेशान हूं, दुखी हूं, अपेक्षाएं। जैसे दूसरे चाहते, जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। दूसरी अपेक्षाएं बताऊं, जैसे दूसरे चाहते हैं मैं नहीं कर पाता हूं तो भी टेंशन हो जाता है। आई वॉन्ट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ माई ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बी इम्प्रेसिव, मैं मेहनत कर रहा हूं, उसको दिखाना भी पड़ता है ताकि वो देखें कि मैं कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, और इतना करने के बाद भी जब साहब को दिख नहीं रहा है ना तो बड़ा दुख होता है। हाँ या ना? अपेक्षा नंबर 3, जब मनुष्य को मनुष्य से ही अपेक्षा है, when I have expectations from myself, मैं भी प्रमोशन पाना चाहता हूं, मेरा वो मेडिकल में थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया, आपके उसमें होता है मेडिकली फिट नहीं होते हैं तो फिर टाइम देते हैं, वापस ट्रेनिंग में भेजते हैं, 6 महीना ट्रेनिंग करके आओ, वापस अपना क्वालिटी को बढ़ाओ फिजिकल फिटनेस का, कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन फिर ठीक नहीं हो रहा है, प्रमोशन मिल नहीं रहा है, वो भी हमको टेंशन हो जाता है। टेंशन का एक मुख्य कारण मैं बताता हूं, बुरा मत मानिएगा, सहमति जताइएगा अगर सही है या नहीं है, हमारा टेंशन का कारण है हमारा परिवार। यस और नो? हाँ या ना? उसमें और स्पेसिफिकली बताऊं, उसमें भी विशेष हमारा टेंशन का कारण हमारे बच्चे, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है। यहां मैं मेहनत की कमाई कमा रहा हूं, खून पसीना हम एक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्थान पर जाकर हम रहते हैं, अकेले रहते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड आपका पोस्टिंग कहां कहां होता है, कोई तुरा बॉर्डर में है तो कहीं कश्मीर में है, तो कहां कहां आपका पोस्टिंग होता है। और ये 24 घंटे में 25 घंटे मोबाइल लेके बैठा हुआ, टेंथ बोर्ड में, टेंशन होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? बच्चों के कारण चिंता है या नहीं? है ना? प्रश्न पूछूं, बुरा मत मानिएगा, बच्चे पैदा किए या टेंशन पैदा किया? कुछ लोग बोल रहे हैं अब तो हम जवाब ही नहीं देंगे कुछ भी, क्योंकि कुछ भी जवाब दो आप हम पर ही भारी पड़ते हो। ठीक है, अभी सही सही जवाब दो, माफी चाहता हूं। हाँ जी, किससे पैदा हुई? मैं सुना नहीं, क्या कह रहे? अच्छा अच्छा क्या क्या मतलब, इनको समझ अभी आ रहा है, ठीक है ना, इतने वर्षों के बाद की, हाँ अब समझ में आया, टेंशन ही पैदा हुई है, ठीक है ना, गुड। टेंशन का कारण पत्नी, टेंशन का कारण सासू माँ, टेंशन का कारण वो काम वाली बाई, क्योंकि जिस दिन इम्पोर्टेंट काम होता ना उसी दिन वो छुट्टी लेती है। हाँ या ना? भाई लोग बोल रहे करेक्ट, आपको ज्यादा अनुभव है, क्योंकि जिस दिन काम वाली बाई घर पे नहीं आते ना, चिंता की कोई बात ही नहीं है मैडम को, क्योंकि काम वाला भाई तो है। बा और भा में तो अंतर है, और ज्यादा क्या अंतर है, बाई हो या भाई हो, तभी इन्होंने कहा करेक्ट, क्योंकि जिस दिन वो नहीं आती है टेंशन इनको हो जाता है। टेंशन का कारण हमारा नेचर ऑफ वर्क, यस और नो? भारत में मैंने आपको बताना भूल गया, जो भी आप लोग यहां बैठे हुए विद फैमिली अब भी अगर आप आए हैं, हमारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम सब आपको तहे दिल से यू नो थैंक यू कहूं या सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कहूं या धन्यवाद दूं, ये सब शब्द बहुत फीका है। हम कितना भी आपको धन्यवाद दें, हम कितना भी आपके शुक्रगुजार हो, वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि गिरीश एज अ सिविलियन, मैं ट्रेन में ट्रेवल करूं या भारत में कहीं पे भी रहूं, ठीक है ना, चाहे आरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनी आईटीबीपी, सीआईएसएफ, द स्टेट पुलिस, जो भी हो, मैं तो बड़े आराम से रात को घर में सोता हूं। और मेरी सुरक्षा, पता है मैं इतना सुरक्षित होकर निश्चिंत होकर क्यों सोता हूं? क्योंकि मुझे पता है आप अपने जीवन की हर बात को बाजू में रखकर, अपने जीवन को दाव में लगा करके मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप उठाते हो, और ये जान करके हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हो, बहुत वंदनीय हो और बहुत पूजनीय हो। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप हमारी सुरक्षा के लिए जान पर खेल जाते हो। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है भारत में दैट इवन इफ यू सैक्रिफाइस योर लाइफ इट इज ओके। कोई टीचर बच्चों को पढ़ा करके जीवन बनाने के लिए अपना जीवन को त्याग करने की जरूरत नहीं है, मरने की आवश्यकता नहीं है उसको। बट अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए आपको गोली लग जाती है तो इट इज ओके। एक टीचर को गोली खाने की जरूरत नहीं है, एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को अपनी जान को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसा ही एक सुरक्षा बल है जिसमें इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इवन इफ यू डाई इट इज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी। ये भी अपने आप में बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही वर्थ अप्रिसिएशन है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप मेरी सुरक्षा करने के लिए यू हैव ऑल द ट्रेनिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, यस, लेकिन उन दुश्मनों से गिरीश भाई की रक्षा करते हो, लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो आपको भी तकलीफ देते हैं, उन दुश्मनों से खुद की सुरक्षा करने की जानकारी, ट्रेनिंग और वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा कम है। इसीलिए शायद हमने आपको यहां पे बुलाया है इन बातों को समझने के लिए। टेंशन का कारण सासू मां, टेंशन का कारण आर्थिक समस्या, टेंशन का कारण हेल्थ, अपना ही नहीं, अगर मेरी मां को कैंसर हो जाएगा तो हमको कहां खुश होगी, टेंशन ही होगा, यही सब है ना टेंशन का कारण। टेंशन का कारण छुट्टी, यस सर नो? जब भी हम अपने से अफसर से छुट्टी मांगने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, आजकल तो फिर भी बहुत आसान कर दिया है, पहले तो और भी डिफिकल्ट था, पता नहीं हमारे जो अफसर है ना उनको क्या GPS, क्या ब्लूटूथ और क्या नेटवर्किंग है, छुट्टी मांगने के लिए जाओ तो उनको 1 किलोमीटर पहले से ही भनक पड़ जाती है कि छुट्टी मांगने आ रहा है, और वो कैबिन में ही दरवाजे पे खड़े रहकर पता है गिरीश को क्या कहता है, मैं छुट्टी मांगने जाता हूं तो साहब कहते हैं स्टॉप, पीछे मुड़। मैंने कहा सर सुन तो लीजिए, घर की परेशानी तो सुन। बोला आउट। बोला गिरीश ऐसे मौके पर छुट्टी का संकल्प आना भी ये करेक्ट नहीं है। यू डोंट नो वी आर सो हार्ड प्रेस्ड फॉर पीपल, कितना प्रॉब्लम चल रहा है, रेड अलर्ट चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा है, मेरे पास सैन्य कर्मी कम है और तुम छुट्टी मांग रहे हो। मैंने कहा सर वो सब मैं जानता हूं, बट सुन तो लीजिए घर का परेशान। बोला आउट, सुनना भी नहीं है। तो कल परसों में प्रोग्राम कर रहा था तो एक भाई कहते हैं सर अफसर सुनते सबका है लेकिन देते नहीं है छुट्टी। मतलब थोड़ा बेटर हो गया, पहले तो सुनते भी नहीं था, अभी सुन लेते हैं लेकिन फिर छुट्टी नहीं देते। और जब छुट्टी नहीं मिलता तो बता हम क्या करते हैं? ओके सर, हाँ सर, ठीक है सर। और जैसे उनके कैबिन से बाहर निकले, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा सब उल्टा उल्टा तो कुछ बोलते भी नहीं है मन में, करेक्ट, फ्रस्ट्रेशन तो है ही नहीं आपको, यही सब है ना टेंशन का कारण, डिस्प्लेसमेंट है ना, हर 2-3 साल में आपको ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, बच्चे सेटल नहीं हो पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं चैलेंजेस को डिफाइन कर रहा था, ये सब हमारे जीवन का टेंशन का कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, ये सब सत्य है। सत्य है कि मैं BSF में काम करता हूं, सत्य है कि मेरी माँ को कैंसर है, सत्य है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, TV ज्यादा देखता है, सत्य है कि मेरे बाल सर के बाल कम हो गए हैं, सत्य है कि मेरे को जो पोस्टिंग नहीं चाहिए था वो ही मिल रहा है, सत्य है कि मैं गांव में अपना घर बनाना चाहता हूं लेकिन वो 20% जो अमाउंट है वो भी नहीं मिल रहा, लोन तो बैंक देने को तैयार है, सत्य है कि मेरी माँ और मेरी वाइफ हमेशा झगड़ते रहते हैं, सत्य है कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। दीज आर ऑल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, दिस इज ट्रुथ, यस यस और नो, ये सब सत्य है। प्रश्न, टेंशन मुझे क्यों हो रहा है? मुझे टेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं इन सब सत्यताओं को किस प्रकार से सामना करता हूं उस पर निर्भर करता है टेंशन है या नहीं। इसका मतलब मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं इन परिस्थितियों को, सत्यताओं को सकारात्मक रीति से हैंडल करूं या नकारात्मक रीति से हैंडल करूं, उस पर निर्भर करेगा आई एम स्ट्रेस्ड आउट और एम आई स्ट्रेस फ्री। इसका मतलब मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है टेंशन का, और वो कौन है? कौन है? कौन है? हाँ मैं, बोलिए मैं, जोर से बोलेंगे, ठीक लग रहा है तो बोलना, मेरी कोई भी बात को स्वीकार नहीं करना, ठीक है? मैं बोलेंगे जोर से, ये आवाज आपके घर तक जाना चाहिए, इतना जोर से कहना, ठीक है? इस हॉल में बोलेंगे हाँ या ना जी। मेरे जीवन में मेरा चैलेंजेस का कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, काश आपके घर वाले सुन पाते, आपका बच्चा आज मंदिर में जाकर, वैसे भी कृष्ण जयंती है आज, 2 नारियल तोड़ता और भगवान को कहता भगवान मेरी प्रार्थना सुन ली, पहली बार पप्पा अक्ल की बात कर रहे क्योंकि मम्मी घर में आकर सिर्फ एक ही चीज बोलती है, तुम लोगों की वजह से मेरा लाइफ, तेरी वजह से ऐसा, तुम लोग, और यहां क्या कह रहे हो? क्या बात है, पहले डिसाइड कर लो तुम या मैं। तो सुधरना किसको है? कितने दुखी होके बोल रहे हैं, थोड़ा उमंग उत्साह से तो बोलो, सुधरना किसको है? आपको मैं एक एग्जांपल दूं, बहुत ही उल्टा एग्जांपल है क्योंकि तभी समझ में आता है, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, ठीक है? मेरे पास है ना एक पेन है, ठीक है, सिंपल सा पेन है, 5 रुपए का होगा, इस पेन को मैं अगर ऊपर फेंकूं, मैंने फेंका अपनी मर्जी से, तो पेन क्या हुआ? नीचे आया। पेन नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रश्न पूछो, ये ग्रेविटी को किसने बनाया? हाँ जी, भगवान ने बनाया। और ग्रेविटी को किसने बनाया? हु क्रिएटेड ग्रेविटी? नेचर ने बनाया। गुड, और बताइए। हाँ जी,
न्यूटन ने।
मैं इसीलिए बार बार पूछ रहा था, किसी को तो ऐसे खतरनाक जवाब तो होना ही चाहिए।
भाई साहब, न्यूटन के पहले भी सेब गिरता था। न्यूटन ने उसका पता लगाया, दैट इज राइट, बनाया नहीं, ही डिस्कवर्ड अ फिनोमिना। उसके पहले भी लोग पेड़ से सेब गिरता था तो उठा के खा लेते थे, न्यूटन ने खाया नहीं, ही स्टॉप्ड एंड एनालाइज कि क्यों गिरा, किस रेट में गिरा, एंड ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, और उसने उसको एक नाम दिया कॉल्ड एज गुरुत्वाकर्षण। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से धरती हर चीज विद इन अ लिमिट, वो उसको क्या करेगी, द मास ऑफ द अर्थ विल पुल इटसेल्फ, हर चीज को खींचेगी, इसीलिए पेन नीचे ऊपर नहीं गया, नीचे गया। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, परमात्मा ने, खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने, ये जिन्होंने भी ये उत्तर दिया इनको भगवान ने पर्सनल SMS भेजा, मैंने बनाया है, बता दे गिरीश को, ज्यादा चिंता मत कर, डोंट डाउट मी, इनका कनेक्शन ही भगवान के साथ, क्या कॉन्फिडेंटली बोले भगवान ने बनाया, आपकी जानकारी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं पता किसने बनाया, आपको ज्यादा पता है किसने बनाया, लेकिन मुझे एक चीज पता है 500%, मैं बहुत क्लियर हूं, वैसे भी क्लियर हूं, ठीक है ना, एक बात को लेकर मैं बहुत क्लियर हूं, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता है किसने बनाया, मुझे नहीं पता किसने बनाया, लेकिन मुझे एक चीज पता है, मैंने नहीं बनाया, ये मुझे 100-500% गारंटीड। जब मैंने नहीं बनाया इसका मतलब आपने नहीं बनाया, इसका मतलब दिस इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन माइंड। ग्रेविटी को हिंदू धर्म ने नहीं बनाया है, ग्रेविटी मुस्लिम धर्म का पेटेंट और कॉपीराइट नहीं है। गुड न्यूज बताऊं, जब से ये ग्रेविटी आया और जब से आप और मैं हैं और आने वाले जितने समय तक रहेंगे, ग्रेविटी को लेकर कोई धर्म युद्ध नहीं हुआ। कमाल है, मेरा ग्रेविटी अच्छा, तेरा ग्रेविटी, मेरा ग्रेविटी में रहेगा तो तू जिहाद, अल्लाह, मोक्ष, नो बड़ी फॉट इन द नेम ऑफ ग्रेविटी का धर्म। हाँ, कितना अच्छा रिंग टोन है, देखे 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 देखे, गुड गुड गुड, डिस्टर्बेंस कहां हो रहा है, चेक करिए, हाँ रिंग टोन अच्छा है, बस इतना ही स्विच ओवर कर देना, चैलेंजेस तो रहेगा ही नहीं, एंड यू हैव गॉट चॉइसेस टू हैंडल इट। प्लीज बताइए ग्रेविटी का धर्म, ग्रेविटी वॉज नॉट इनएक्टेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इस संसार का कोई पार्लियामेंट ने उसको लॉ करके ग्रेविटी को नहीं बनाया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स नॉट अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इट्स नॉट अ क्रिएशन ऑफ साइंस, इट्स नॉट अ क्रिएशन ऑफ रिलीजन, इट्स नॉट अ क्रिएशन बाय मदर्स, फादर्स, समाज, संस्कृति। संस्कृति को लेकर भी बहुत ज्यादा महायुद्ध चल रहा है, ट्रिपल तलाक और ये तलाक और वो तलाक, हमारी संस्कृति, आपकी संस्कृति, हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म। प्लीज बताइए ग्रेविटी, मेरे अनुसार ग्रेविटी सत्य है, इट इज ट्रुथ, फिजिकल ट्रुथ, आप मानो ना मानो, जानते हो ना जानते हो, अच्छा लगे ना लगे, आपके पसंद का हो ना पसंद का हो, आपके कल्चर को मैच करता है नहीं मैच करता है, अनुभव तो करना पड़ेगा ग्रेविटी, यू कैन डिनाई इट। ये ग्रेविटी, ये जो सत्य है ना, इसकी दो विशेषता है, चैलेंजेस पता है कहां है, हम झूठा जीवन जी रहे हैं, सत्य से कोसों दूर है, एवरी टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स। ग्रेविटी सत्य दो कारणों से है, नंबर वन, दो कंडीशन होगा वही सत्य है, सदा, ऑलवेज, नंबर टू, फॉर everyone इट इज द सेम, इट can't डिस्क्रिमिनेट। गिरीश ने ग्रेविटी नहीं बनाया है, ब्रह्मा कुमारी ने भी ग्रेविटी नहीं बनाया है, आपको हम यहां जो बताएंगे ना, मैंने जितना समझा है 22 साल में, ये सब ब्रह्मा कुमारी का क्रिएशन नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का नया भगवान, ब्रह्मा कुमारी इसका नया ज्ञान, ये फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी इज मनुष्य का क्रिएशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज नॉट माय क्रिएशन, सॉरी,
मैं मरने के लिए तैयार हूंगा लेकिन मैं अपनी बात आपको कभी नहीं बताऊंगा। मैं कौन होता हूं सत्य और झूठ को बताने वाला? मेरा क्रिएशन ही नहीं है, मैंने नहीं बनाया ग्रेविटी को, मैंने आपका हार्ट नहीं बनाया, मैंने आपका किडनी नहीं बनाया। तनाव में रहिए, गारंटी मैं करता हूं आपको हार्ट अटैक होगा। दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड। आप बर्बाद कर रहे हो फैक्ट्री सेटिंग को बच्चों के कारण, गुस्सा करके, ऑफिस के कारण, बीएसएफ के कारण। खड़े होकर मंच में कहना मेरे को हार्ट अटैक आया बीएसएफ के कारण, मेरे को हार्ट अटैक आया मेरे नौकरी के कारण, मेरे को हार्ट अटैक आया घर वालों के कारण, झूठ है, कंसेप्ट ही रॉन्ग है, बिलीफ सिस्टम ही गलत है। उदाहरण देता हूं, गिरीश को ग्रेविटी पसंद नहीं है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन है, मेरे को ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, मेरे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मेरे को रात को नींद नहीं आता है, मेरे को क्रोध आता है ग्रेविटी को लेकर के। आप वहां बैठकर सोच रहे होंगे अरे कैसा व्यक्ति है, ग्रेविटी से इसको क्या तकलीफ है। दो उदाहरण देता हूं, आई सब्सटेंशिएट माय आर्गुमेंट, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है वो बताता हूं। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, कभी कभी बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूं। मैं जहीराबाद तेलंगाना से मैं रात के 1 बजे बाय रोड आया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, 4 o'clock आई रीच, 5 बजे की मैंने फ्लाइट पकड़ी, अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से यहां माउंट आबू 5 hours ड्राइव, आई केम हियर, खाना खाया, ऐसे शाम का सेशन, 2 sessions कराया, 8 बजे वापस 5 hours में अहमदाबाद वापस गया। मैं रात के 12-1 बजे पहुंचा, 2 रात में सोया नहीं। थर्ड डे मॉर्निंग मेरा 7 o'clock की फ्लाइट थी पटना के लिए, 2 रात मैं सोया नहीं था, मैं इतना थक गया था, मैंने अलार्म भी सेट किया, मैं फ्लाइट नहीं मिस करना चाहता था, 6 बजे मैं उसको रिपोर्ट करना था। पता नहीं मेरी आंख लग गई, मैं थका था, टायर्ड था। जब मैं उठा तो मैंने देखा 15 मिनट्स टू रिपोर्ट टू द एयरपोर्ट, माई गॉड आई विल मिस द फ्लाइट। मैं तुरंत बेड से जंप किया, सीधे वॉशरूम में गया नहाने के लिए, जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में मैं फिसल गया बाथरूम में, धड़ाम करके मैं नीचे गिर, इतना जोर से मुझे चोट लगा, 1 हफ्ते तक आई हैड पेन इन माई शोल्डर्स। मैं एक प्रश्न पूछूं आपको, प्लीज जवाब दीजिएगा, मेरे शोल्डर पेन का कारण कौन? आप है ना बिल्कुल अच्छे नहीं हो। अरे थोड़ी संवेदना, भावना, करुणा, दया, उल्टा ये बोलते आप। अरे एक तो मैं अपना दर्द वर्ग कहानी सुना रहा हूं और इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तू ही तेरा दर्द का कारण है। आप लोगों को अपना थोड़ा अच्छा समझकर मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं और आप उल्टा मुझे ही परेशान कर, बोला आप। अरे सर मैं 2 रात सोया नहीं था, सत्य है। मैं लेट उठा, सत्य है। मैं थका हुआ था, सत्य है। जल्दीबाजी की, सत्य है। बाथरूम में जब फर्श पर पानी पड़ा उसकी फिसलाहट बढ़ गई, वो सत्य है। फिसला भी, ध्यान नहीं था, अटेंशन नहीं था, चिंता थी, सत्य है। फिसला भी, सत्य है। गिरा क्यों? अरे ये ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होता था तो ये सब होते हुए भी मैं हवा में ऐसे 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 लोटता था, टकराता नहीं था। अब आपको समझ में आ रहा है? उदाहरण नंबर 2, मैं मुंबई में रहता हूं, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता हूं, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, पांव रखने की जगह नहीं होती पीक आवर्स में। मेरे दोनों हाथ में बैग्स थे, जब स्टेशन आया उतरना था, कुछ लोग चढ़ना उतरना, भीड़ भाड़, धक्का मुक्की में किसी का पता नहीं हाथ या क्या सर मेरे चश्मे में लगा, चश्मा मेरे मुख से निकला। इससे पहले कि ये मैं बैग उठाकर इस हाथ में पकड़कर चश्मा पकड़ता, चश्मा नीचे गिरा, 2-4 लोगों ने उस पर पांव रखा, 5,000 रुपए का चश्मे का नुकसान का कारण। क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छे। चीजों को ना उल्टों को उल्टा समझाओ तो उनको सुलटा लगता है। टू गुड, दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अब मैंने आपको समस्या बता दी, मेरा ग्रेविटी इज माय प्रॉब्लम, प्लीज बताइए। मैं शांत रहना चाहता हूं, सुखी रहना चाहता हूं, आनंद में रहना चाहता हूं, जीवन का सुख अनुभव करना चाहता हूं, बताइए मैं क्या करूं? हाँ जी, क्या बात। कुछ लोग कहते हैं चांद पे चले जाओ, मैंने कहा चांद शब्द बोलना नहीं, मुझे बड़ा तकलीफ होता है। ठीक है ना, कौन सा चांद पे बोल रहे हो वो भी मुझे तकलीफ। मैंने कहा पैसे आप दे देना चांद में जाने का। मैं है ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चेन्नई डॉक्टर्स का प्रोग्राम कर रहा था, वहां भी यही प्रश्न रखा। एक भाई साहब ने हाथ ऊपर उठा, बोला गिरीश भाई मेरे पास दवाई आपका। मैंने कहा क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। एक मैडम ने भी हाथ ऊपर उठा, मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, पहले आप बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं? तो उन्होंने कहा मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं। मैंने कहा लेकिन मेरे को हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ग्रेविटी से प्रॉब्लम है। बोला हाँ मैं आपको ठीक कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरी स्पेशलाइजेशन
मेरी जो विशेषता है, एक्सपर्टाइज है, वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। मैंने कहा लेकिन मेरे घुटने में तो दर्द भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं दर्द की कोई बात नहीं है, आपका जो टॉप फ्लोर है ना ये घुटनों के लेवल पर आ गया है, जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो ना, और मैं घुटना रिप्लेस कर सकता हूं। हिंदी भाषा में हम कहते हैं ना तुम्हारा दिमाग घुटने पे आ गया क्या, जो तुम उल्टा बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सर आपके पास कभी आऊंगा ही नहीं। अरे आप मेरा घुटना चेंज कर रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम ग्रेविटी से है। मैंने कहा मैडम आप जरा जवाब दीजिए, आप थोड़े सेंसिबल लगते हैं, पहले ये बताइए आप किस चीज के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा गिरीश भाई मैं मनोरोग चिकित्सक हूं, आई एम अ साइकेट्रिस्ट। मैंने कहा अब ठीक लग रहा है, आई हैव रीच द राइट पर्सन। मैंने कहा मैडम प्लीज बताइए व्हाट शुड आई डू। शी सेड गिरीश आई हैव गॉट मेडिसिंस, टू मेडिसिंस फॉर यू, दो दवाई आपके लिए। मैंने कहा मैडम बीमारी ज्यादा है क्या, दो दवाई खाना पड़े। बोला नहीं नहीं पहला एक दवाई लीजिए, असर ना करे SOS प्लान बी, दूसरा दवाई ले लेना। मैंने कहा अरे कितने अच्छे हैं आप, अगर एक असर ना करे यू हैव प्लान बी ऑल्सो। मैंने कहा क्या करूं। उन्होंने कहा पहला दवाई है भर्ती हो जाओ। आपकी हंसी से मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, कहां भर्ती हो जाओ। हां जी भाई साहब तो मुझे GPS लोकेशन भी दे रहे, बोला आगरा चले जा, डायरेक्ट पहुंचेगा वहां पर। पागल। मैंने कहा मैडम वो तो घुटना चेंज करने वाली जैसी बात कर रहे हो आप। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, एडमिट नहीं होना, दूसरा दवाई बताइए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा गिरीश भाई दूसरा दवाई है जैसे साहब ने कहा, स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट इट। गुड न्यूज बताऊं, आप अपने वर्तमान जीवन के अब इस क्षण तक 5:30 बजे तक 24 अगस्त 2019 तक एक सेकंड भी आपने गुरुत्वाकर्षण को लेके ना टेंशन में आए, ना परेशानी हुए, ना दुखी हुए, ना एंग्जाइटी डिसऑर्डर हुआ। कभी चलते चलते किसी ने कहा वो रो रहा हो, आपने कहा क्यों रो रहे हो, गुरुत्वाकर्षण की वजह से रो रहा हो। आप उससे दो कदम दूर जाके बोलेंगे चलते हैं भाई, इसको हैंडल नहीं कर सकते। यस और नो, आपको कभी तकलीफ हुई गुरुत्वाकर्षण से, जब चल के जा रहे थे कहीं गिर गए, फिसल गए, चोट लग गई, किसी साथी ने पूछा आप क्यों, आपको पैरों में क्या तकलीफ है, तो पता आपने क्या हुआ होगा, अरे यार ध्यान से चल नहीं रहा था ना, पांव थोड़ा फिसल गया, चोट लग गई, सारी गलती मेरा, ध्यान ठीक नहीं था। गुरुत्वाकर्षण को कभी ब्लेम नहीं किया। सवाल पूछूं, आप में गुरुत्वाकर्षण को स्वीकार करने की ताकत और बुद्धि है, लेकिन पत्नी को स्वीकार नहीं किया, वो जो है जैसे है, पति को स्वीकार नहीं किया, सासू मां को स्वीकार नहीं किया, बच्चों को स्वीकार नहीं किया, अपने जॉब प्रोफाइल को स्वीकार नहीं किया, सब आदेश अनुसार। आदेश अनुसार स्वीकार करना और ऐसे स्वीकार करने में जमीन आसमान का अंतर है। यस और नो, अपने भाग्य को स्वीकार नहीं किया, पास्ट को, फ्यूचर को, समाज को, भगवान को, किया अभी तक, किया ऑलवेज किया, हां या ना, नहीं ना। सवाल पूछूं, 100% जवाब देना, कहां भर्ती होने लायक है। अभी तो बोलती बंद हो गई, मेरे लिए तो GPS लोकेशन भी इतना कॉन्फिडेंटली आगरा यहां वहां, और खुद के लिए जब, दोस्तों यही प्रॉब्लम है। द चैलेंज इज नॉट एक्सटर्नल, द चैलेंज इज विद इन, व्हेन आई डोंट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। चलो चॉइस करें, प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम कहां है, इधर, बस इसको थोड़ा ठीक करना है और कुछ नहीं करना है, करें। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, उदाहरण देता हूं, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाता है, शोएब अख्तर बॉल को चमका रहा है, सचिन तेंदुलकर 22 यार्ड चलकर और 10 यार्ड चलकर शोएब अख्तर को कहता है धीरे गेंद डालना हा तो ही बैटिंग करूंगा, चलेगा क्या। आपका बच्चा अगर कहता है पापा मैं मैथमेटिक्स का पेपर नहीं लिखूंगा, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, चाहिए तो आप लिख लो, आप क्या समझाओगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, पढ़, मेहनत कर, अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, ट्यूशन भेजा,
क्रिएट इंटरेस्ट, पुट एफर्ट, यस और नो? मुक्ति तो नहीं है मैथमेटिक्स पेपर, लिखना तो पड़ेगा। सवाल पूछूं, जब जीवन में कोई मैथमेटिक्स पेपर आता है हमारा, तो हम क्या करते हैं? अपने आप को कहा प्रैक्टिस कर, अभ्यास कर, हैंडल कर, लर्न इट? नहीं, ये सुधर जाए बस, ये ठीक हो जाए बस, मैं जैसा चाहती हूं वैसा ये कर ले बस। सॉरी, यहां मुक्ति नहीं है। द ओनली वे पॉसिबल इज टू लर्न, इज टू प्रैक्टिस, इज टू एम्पावर, इज टू इक्विप। सचिन रमेश तेंदुलकर को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तू ब्रेटली है, तू शेन वॉर्न है, तू लसित मलिंगा, तू मुथैया मुरलीधरन है, तू शोएब अख्तर है, तू बाउंसी पिचेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तुम टर्निंग ट्रैक ऑफ साउथ अफ्रीका है, तू स्टीव बकनर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा गलत डिसीजन में आउट दिया था, टू हेल विथ यू। तुम सबको मैं छक्का मार मार के 100 शतक नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं है। ये मेरी काबिलियत है, ये मेरा कॉम्पिटेंसी है, ये मेरा लव फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट है, ये मेरी चाहत है, ये मेरा जुनून है कि मैं क्रिकेट से प्यार करता हूं। तू 6 के 6 यॉर्कर लेन गेंद डालेगा ना, मैं फ्रंट फुट पे जाकर फुल टॉस बना के या तो छक्का मारूंगा या बैक फुट में जाकर उसको फ्लिक करके थर्ड मैन बाउंड्री पे चौवा मारूंगा। दैट इज माई कॉम्पिटेंसी, दैट इज माई स्किल, दैट इज माई एबिलिटी, दैट इज My love for the game of cricket. सवाल पूछूं, where is your love for your wife? Where is your love for your children? Where is your love for BSF? Where is love, your love for your heart, kidney, lungs? Where is your love for your own life? बस रोते रहो, कंप्लेन करते रहो, इरिटेट करते रहो, इनकी वजह से इनकी कितना सहन करो, कितना प्यार करो, कितना चुप रहो, कितना सहन करो, सामने वाला भी तो थोड़ा सा, अरे तो रोता काहे को है, मुस्कुरा के बोलना। मेरे को प्रॉब्लम रोने से है, मेरे को प्रॉब्लम घिटने से है। सचिन रमेश तेंदुलकर कभी नहीं रोया फ्रेंड्स, जितना मैं जानता हूं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 98 रन पे रॉन्ग डिसीजन में स्टीव बकनर ने उंगली उठा दी थी, वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा मैं आपको। और पता है सचिन तेंदुलकर पैड के ऊपर लग रहा है और सचिन तेंदुलकर आई मीन ही सरप्राइज, हाउ कैन ही गिव मी आउट, वो भी 98 रन पे। कितना खुन्नस आना चाहिए, कितना गुस्सा आना चाहिए, कितना अन्याय। सचिन तेंदुलकर विद अ ट्विंज ऑफ स्माइल ही वॉक्स बैक टू द पवेलियन। पीछे पवेलियन में प्रेस वाले उसको पूछते, आपको गुस्सा नहीं आता, आप कंप्लेन नहीं करते, आप इरिटेट नहीं होते, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सचिन रमेश तेंदुलकर जवाब देता है, मेरे लिए मेरा बल्ला बात करेगा। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जवाब नहीं देना, व्हाट विल स्पीक फॉर यू? प्रॉब्लम पता है कहां है? मैं, इसीलिए आज हम माता पिता इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल नहीं हुए। हमारे बच्चों के लिए पता है हीरो कौन है? सलमान खान। और पप्पा, इसीलिए मेरे ना दो बच्चे 5th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, जब मैं घर में आता हूं ना मुंबई में, अपना गाड़ी को पार्क करता ना घर के बाहर, मेरी एक आदत है, मैं हॉर्न बजाता हूं, पैंप पैंप। पता है हॉर्न क्यों बजाता हूं? ताकि घर वालों को पता चल जाए बॉस हैज अराइव्ड। और जैसे ही वो पैंप पैंप का आवाज सुनते ना, ऑर्डर आ जाता है। वो पसीना पसीना पोंछ के, पाउडर लगा के, सिर के बाल ठीक करके, कपड़ा सेट करके, कमरे को अभी तक महायुद्ध छिड़ा था, घमसान युद्ध चालू था, इंडिया पाक वॉर, ईरान इराक वॉर, पैलेस्टीन इजराइल इशू, इनके सामने फीका पड़ जाएगा, इतना महायुद्ध करते घर पे, हाथापाई चालू था, दे वर क्रिएटिंग रकस इन द हाउस, एवरीथिंग वॉज टॉपसी टर्वी। और जैसे ही पैम पैम का आवाज सुनते, सब सेट करके किताब खोलकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये बाप ओम श्री गणेशाय नमः करके कमरे में एंट्री करता है, ये दोनों बच्चों को पढ़ते हुए देखकर पता है मेरे मन में क्या भाव आता है? मेरे बच्चे हैं, क्या डिसिप्लिन है, क्या सेल्फ स्टडी है, क्या इंटरेस्ट है, क्या पढ़ाई में इनको महत्व है। क्योंकि मैंने अपने बाल्यकाल में कभी शाम को किताब खोल के पढ़ा नहीं किया था, हम तो ग्राउंड में रहते थे, और ये देखो कितने अच्छे। और मुझे मैन्युफैक्चरर पर थोड़ा गर्व होता है क्योंकि प्रोडक्ट ही इतने अच्छे हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं अपने कमरे में जाता हूं ना फ्रेश होने के लिए, छोटा वाला बड़े वाले के कान में फुसफुस आता है और पता है क्या कहता है? टाइगर आ गया, आदेश अनुसार। क्या मेरा बच्चा इसीलिए पढ़ सकता है? क्योंकि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है,
क्या वो इसीलिए पढ़ सकता है क्योंकि उसको उसकी जिम्मेवारी का बोध है? क्या वो इसीलिए पढ़ सकता है क्योंकि ही नोज दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू मेक माई लाइफ? बट एज अ डैडी हमने ये उसको इनकलकेट नहीं करके दिया, इट इज आदेश अनुसार। पप्पा आएगा नहीं तो लगाएगा दो खींचकर। पता है बड़ा वाला छोटे वाले के कान में क्या कहता है? ओए तेरे सिलेबस के बाहर की बात है, क्योंकि उसने हिस्ट्री नहीं शुरू की, सेकेंड स्टैंडर्ड वाले ने अभी तक इतिहास शुरू नहीं किया। बड़ा वाला छोटे वाले के कान में कहता है टाइगर नहीं हिटलर आया है। सवाल पूछूं, इसी दिन के लिए आप और मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बांग्लादेश बॉर्डर पर, यहां पे कश्मीर बॉर्डर पर जाकर के आप अपनी जान पर खेलकर, इन बच्चों के लिए क्या फीडबैक है हमको? वेयर इज लाइफ? लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग। और फिर हम दुखी होकर माता पिता मेरे पास आकर कहते गिरीश भाई क्यों जिए बताओ, ये फीडबैक के लिए? मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, जोर से बोलिए, अब समझ में आ रहा है। चैलेंजेस वहां नहीं है, चैलेंजेस इधर है। अगर सलमान खान को टीवी में देखकर वो हीरो बन सकता है, सिर्फ टीवी में देखता है वो और वो हीरो, यहां 15 साल 365 दिन 24 घंटे मैं इसके साथ रहा हूं और मैं टाइगर, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। यस सर नो? चलो चॉइस करें। ये तो हुआ चैलेंजेस। चैलेंजेस कहां पर है? चैलेंजेस किधर है? अंदर, बाजू वाले के अंदर नहीं। जोर से बोलिए, अपने नहीं मेरे अंदर। ये अपने में दो चार और अभी आ जाते हैं, ठीक है ना? आप लोग है ना बहुत स्मार्ट हो, भाषा भी आप लोग है ना वैसी ही हो गया। एक बार मैंने कहा सब बोलने के बाद प्रॉब्लम का कारण कौन, तो एक भाई साहब जवाब था हम। मैंने कहा दूसरा कौन है? उन्हें नहीं 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 मैं ठीक है ना, ये हम में भी दूसरा साथी आ जाता, ठीक है? तो मैं को थोड़ा सा ठीक करें, यही चॉइस है लाइफ में, सिर्फ दो ही चॉइस है। नौकरी तो जोर से बोलिए करनी, इतना दुखी होके बोल रहे, नौकरी तो करनी पड़ेगी, घर वालों को संभालना पड़ेगा, बस दो ही चॉइस है। चलो एक चॉइस करके देखते, 5 मिनट है मेरे पास। दोनों हाथ ऐसे करिए, ओठों के किनारे रखिए। क्या लग रहे हैं आप लोग? अच्छे लग रहे हैं। ऊपर की ओर जरा धक्का लगाइए, मुस्कुराइए। क्या बात है! अब मुस्कुराता हुआ चेहरा रखकर हाथ नीचे कर लीजिए, चेहरा वैसे ही रहने दीजिए। एक बार मैं दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था, एक भाई साहब पीछे बैठे थे, उन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा सर हाथ नीचे करिए। बोलता नहीं करूंगा। मैंने कहा सर हाथ तो नीचे करिए, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। ही सेड नो गिरीश आई विल नॉट। मैंने कहा सर प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा गिरीश हाथ नीचे करता हूं ना तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर तो भगवान ही भला करे आपका, ठीक है? आपका अपनी मुस्कुराहट पर कंट्रोल नहीं है। कौन सा जिंदगी, कौन सा भविष्य, कौन सा घर, कौन सी नौकरी? तो सब मुस्कुरा रहे हैं? आजू बाजू वाले को देखिए मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। और अगर वो नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो अपना जैक का सहयोग दूसरे को दीजिए, क्योंकि उनका जैक इनइफेक्टिव है, ठीक है ना? ये जैक ही तो है। सब मुस्कुरा रहे हैं? बस एक छोटा सा निवेदन है, करूं? वैसे तो मैं कुछ लोगों से छोटा भी हूं, निवेदन करूं? कल मतलब जिस दिन आप यहां से जाएंगे ना, 27th को मान लो आपकी रिटर्न टिकट है, वहां से शुरू होगा, ठीक है ना? ये कैंपस छोड़ने के बाद शुरू होगा। अगले 24 घंटे तक, मान लीजिए आज आप जा रहे हैं यहां से, ठीक है, तो कल शाम के 6 बजे तक ऐसे ही रहना। आप अपने घर पहुंचना, टिंग टोंग बेल बजाना, घर में एंट्री करते साथ देखना छोटू दोनों पांव टेबल के ऊपर पीछे हैचबैक सीट में बैठ के छोटा भीम देख रहा है, तो उसको मम्मी कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, ठीक है? जब ऐसे कहेंगे ना तो वो आपको ऐसे देखेगा, और पता है आपको क्या कहेगा? मम्मी माउंट आबू जाने के पहले तो आप नॉर्मल थी, जब से आप वहां से आई हो ना आपका एक दो ढीला लग रहा, अरे मुस्कुरा रही है। दूसरी बार उसको कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे तक यही कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले। वो आपको बोलेगा मम्मी तबीयत तो ठीक है ना? तब उनको कहना तबीयत भी ठीक है, तेरे को होमवर्क मिलता है ना स्कूल का? हाँ मम्मी मिलता है। तो उसको कहना मेरे को भी होमवर्क मिला है
उमर, ये तो विद्यालय है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व जीवन का विद्यालय, इंजीनियरिंग विद्यालय, मेडिकल विद्यालय, लॉ का विद्यालय, मैनेजमेंट का विद्यालय और लाइफ का विद्यालय। इसीलिए हिटलर और टाइगर हो गए, क्योंकि लाइफ इज लॉस्ट। और एक दिन जब तक आप मुस्कुराते रहोगे ना, तो आपका बच्चा आपको कहेगा मम्मी पापा अगला तुरंत आपका माउंट आबू विजिट मैं टिकट बुक करता हूँ, प्लीज जरूर जाना, क्योंकि आपके वहां जाने से हमारा जीवन सुखदायी बन रहा है। ओह, गुस्सा नहीं करते। और उसको ऐसे नहीं कहना दो तीन घंटे के बाद, बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले, कल 6 बजे के बाद तेरे को बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ, क्योंकि गिरीश ने हमको सिर्फ 24 घंटे का ही होमवर्क दिया। अगर 2-4 महीने का होमवर्क देता था तो उल्टा बताऊं दोस्तों, पता है नॉर्मल क्या हो गया आजकल, ये सब नॉर्मल है। और अब नॉर्मल सदा मुस्कुराना अब नॉर्मल हो गया है। कैन यू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव स्टूप्ड डाउन टू सच लो लेवल्स ऑफ डिग्रेडेड ह्यूमन लाइफ। आपका बच्चा इंडियन नेवी का ऑफिसर पप्पा से उसको कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे को एक वर्किंग मम्मी से कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे को एक JCO XYZ से मतलब नहीं है, मुझ बच्चे को मुस्कुराती मम्मी, लवली मम्मी, स्वीट मम्मी, रॉक सॉलिड मम्मी, विपरीत परिस्थितियों में भी ना घबराने वाली मम्मी, ना रोने वाली मम्मी, अपना दुख का कारण किसी और के सर पर ना डालने वाली मम्मी, इंस्पिरेशनल पप्पा, हीरो पप्पा, रॉक सॉलिड सलमान खान जैसा मुझे पप्पा चाहिए। गारंटी मैं करता हूं आपका बच्चा सलमान खान को छोड़कर आपको बोलेगा पप्पा यू आर माय हीरो। लेकिन हमने किया क्या? बस इतना ही तो करना है, जो भी परिस्थिति आवे उसको बहुत मुस्कुरा के करें। ठीक है, लास्ट एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम लोग इनॉग्रेशन पे जाएंगे। जितने भी हस्बैंड्स यहाँ बैठे उनका बता देता हूँ, क्योंकि आप संख्या में ज्यादा हैं। आप घर जाएंगे, घर में रात्रि भोजन खाने बैठेंगे, आपकी मैडम पत्नी आपके लिए दाल रोटी चावल सब्जी बनाएगी, मैं पति आप पति, ठीक है, और आज मैडम ने हमारे लिए पालक पनीर की सब्जी बनाई है, ठीक है, जो मुझे बहुत पसंद है, उसकी खुशबू से ही भूख बढ़ गई थी थोड़े से। और जैसे ही आपने मैंने रोटी का टुकड़ा तोड़ के सब्जी में, पालक पनीर की सब्जी में मिक्स करके पहला निवाला, द फर्स्ट बाइट आई टेक, जैसे ही मुख में डाला, आई इतना ज्यादा नमक, तो पता है आपको क्या करना है? मुस्कुराते हुए अपने पत्नी को बुलाना, जरा इधर आइए। वो किचन में से बोलेंगे क्या लेकर आऊं, रोटी चाहिए क्या? उनको कहना कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ इधर। सब्जी लेकर आऊं क्या? उनको कहना कुछ नहीं चाहिए, जरा तुम इधर आ जाओ। जब वो आपके बाजू में खड़े हो, आप अपनी मातृभाषा में बोलना, आप अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांतों से, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, वाइफ की आंखों में आंखें, ये मैं क्यों कर रहा हूं, आदेश अनुसार नहीं, ये मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, दिस इज माई लाइफ, दिस इज वॉट आई विल स्पीक इन माई लाइफ, दिस इज माई चॉइस, फॉर एवरी चैलेंज आई गॉट टू चॉइस, या तो फ्रस्ट्रेटेड होकर रहो या मुस्कुरा के रहो, एंड दिस इज वॉट आई चूज टू बी हैप्पी ऑलवेज। मेरा हैप्पीनेस आप नहीं छीन सकते हो। मुस्कुराकर पत्नी को देखना, उनकी आंखों में आंखें डाल करके पालक पनीर का कटोरी अपने हाथ में उठाना और उनकी आंखों में देखकर कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा। मैं अचार के साथ खा लूंगा, मैं दही के साथ खा लूंगा, मैं गुड़ के साथ खा लूंगा, मैं उपवास कर लूंगा, लेकिन एक चीज नहीं करूंगा। क्या बात है, आप हीरो हो अपने लाइफ में। इस संसार का कोई नमक एक इंडियन आर्मी के जवान को, एक BSF के जवान को, जो दुश्मनों से मुंह तोड़ जवाब देकर अपने जान पर खेल करके भारत माँ की रक्षा कर सकता है, लेकिन एक छोटे से नमक पर इस 15 साल से शादीशुदा पत्नी को गुस्सा कर सकता है? आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन योर एंगर, आई हैव सीरियस डाउट्स ऑन योर ओन, क्या बोलते हैं, सेफ्टी फॉर योर हार्ट, फॉर योर किडनी। मैं आपको बताऊंगा, गुस्सा करिए, हार्ट ब्लॉकेजेस 100% होंगे। फिर समय मिलेगा तो जरूर शेयर करूंगा कल परसों।
प्लीज बताइए। पीछे बैठ के मेरा बच्चा देख रहा है और पता है क्या दिखता है, वाओ मेरा डैडी इतना ज्यादा नमक का सब्जी खाकर मम्मी को आई लव यू कहता है, वाओ हीरो है। सलमान खान घबराता नहीं है, वो हमेशा उसकी वाइफ को प्यार करता है, ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। वो मूल्यनिष्ठ है, सिद्धांतवादी है, घबराता नहीं है, अपने मूल्य पर चलता है, वो युक्तिबाज है। मेरा डैडी सदा मम्मी को प्यार करता है, एनी एक्सप्रेसेस इतना नमक की सब्जी खाने के बाद भी। और पता है बच्चा एक चीज और सीखता है, और वो सही सत्य आप सिखा रहे हो कि पुरुष महिलाओं पर अत्याचार नहीं कर सकते। मेरा डैडी इतना ज्यादा नमक वाला सब्जी खा करके भी मम्मी को रिस्पेक्ट करता है, मम्मा को प्यार करता है। इसका मतलब बेटा जिंदगी भर महिलाओं को, चाहे वो कल पत्नी हो, चाहे माँ हो, सासू माँ हो, फ्रेंड हो, कोई भी लड़की हो, उसको सदा सम्मान की दृष्टि से देखना, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है। उल्टा उस वक्त अगर हम चिल्ला कर कहते हैं क्या खाना बनाया तुमने, पता है छोटू पीछे बैठ के क्या समझ रहा है, सीख रहा है वो कि पुरुष महिलाओं पर अत्याचार कर सकता है, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो। दिस इज हाउ द लाइफ इज, दिस इज हाउ जीवन ऐसे ही चलता है। लेकिन ये गलत है, और किसने सिखाया उसको गलत, हम माता पिता ने। सत्य को स्वीकार करे और सत्यता के अनुसार मुस्कुराएंगे। पक्का आप छुट्टी लेने गए और आपके साहब ने कहा नहीं मिलेगा, आदेश अनुसार यस सर नहीं करना, दिल से सच्चाई से खुशी से किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैं खुश रहूंगा, जी सर, और बाहर निकलना, छुट्टी नहीं मिली कौन सा बड़ा महान तोड़ गया। जब तक साहब छुट्टी नहीं देंगे तब तक मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के पूछता रहूंगा। वो छुट्टी देने में जब तक ना थकें तब तक मैं मुस्कुराने में नहीं थकूंगा। सामने वाला आपको गाली दे, टकलू बकवास कर रहा है, तू पता है मैं क्या जवाब देता हूं, और 5 मिनट करूंगा बकवास। गाली देना आपका निर्णय, मुस्कुराना स्वतंत्र बनिए। लास्ट बात बता देता हूं, भारत में 3 तंत्र था, राजतंत्र राजा का प्रजा पर कंट्रोल प्रोटेक्शन, प्रजातंत्र प्रजा का प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रजा प्रशासन, लोकतंत्र बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। ये दोनों के चक्कर में एक तंत्र भूल गए, स्वतंत्र, स्वयं का, स्वयं के ऊपर तंत्र। 15 अगस्त अंग्रेजों की गुलामी की परतंत्रता से स्वतंत्र, लेकिन जीवन में अभी भी स्वतंत्र नहीं बने। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, कल शाम के 6 बजे तक कुछ भी हो जाए और किसी का चेहरा इस कैंपस में मुंह ऐसा हुआ तो उनको ऐसा करके दिखाना, भाई साहब थोड़ा तो मुस्कुरा दो, ठीक है मुस्कुराएंगे। एक ऑब्जर्वेशन बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा, मैं 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूं आप थोड़ा मुस्कुराओ, इसीलिए इधर उधर की बातें भी, फिर भी कोई महान आत्माएं यहां बैठी हैं। अरे अभी नहीं मुस्कुराओगे तो कब मुस्कुराओगे, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद तो ओम शांति हो जाएगा, मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, इसीलिए 2-4 दिन है, अच्छी तरह मुस्कुराओ। हर बात को यहां आकर के समझो, हमारा सुबह का 4 बजे का एक मेडिटेशन है, अगर आपको लगता है आप उसमें फायदा उठा सकते, हर दिन आप शायद लेट भी उठते होंगे या जल्दी भी उठते होंगे, यहां इसको पूरा फायदा उठाइए, ये अच्छी तरह समझिए इन चीजों को, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। हर सेशन को टाइम के पहले आकर के अटेंड करें। क्यों टाइम के पहले आएंगे, क्योंकि मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, दैट शुड बी द इश्यू। ये करेंगे तो अपने बच्चे भी हमसे बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट कपलेट सुनाता हूं, शायद आपको पहले भी किसी ने सुनाया होगा या आपने पढ़ा भी होगा, जिंदगी के बारे में। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, कभी कभी सामने वाला राइट होता है ना तो भी चुप रहना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, उसको ही समझौता कहते हैं। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए, शौक जिंदगी का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए, जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है, ऐ तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब उल्टा पुल्टा ही हो रहा है, जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है ऐ तो जिंदगी,
तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो करके ही मजा लिया जाए। हो सकता है छुट्टी मांगने जाना और आपके साहब कहेंगे नहीं मिलेगा, कहना कोई बात नहीं सर, बाहर आना, आपके साथी पूछेंगे छुट्टी मिली क्या, बोला वो तो नहीं पता मिली कि नहीं मिली, तो बोला अभी तुम क्या करेगा, तो कहना अभी चाशनी में जाऊंगा। ऐसे ही तो है ना जिंदगी, कितना भी हो चाशनी में डुबो। आपके घर वालों को लगना चाहिए नथिंग कैन डिस्टर्ब पापा, नथिंग कैन बॉदर मम्मी, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी। यही तो मानव जीवन का उद्देश्य। ठीक है, चलिए अपने लिए ताली बजाइए जोर से, अपने माता पिता पत्नी बच्चे, उन्होंने भी आपके लिए बहुत त्याग किया, देश के लिए त्याग किया है, उनके लिए ताली बजाइए, दिल से बजाइए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए ताली बजाइए, उन्होंने आपको यह निमंत्रण दिया। चलिए एक मिनट मेडिटेशन करें, सीधे बैठिए। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन माना अपने आप खुद के लिए अच्छी बातें करना, बी प्लेजेंट टू योर सेल्फ। हम दूसरों को सम्मान, दूसरों को अप्रिशिएट, दूसरों को प्रोत्साहन मेडिटेशन में खुद के लिए करिए। मैं आपको कुछ विचार दूंगा, आपको उसको दोहराना नहीं है, फील करना है, उसको महसूस करिए। हल्का होकर के बैठे, रिलैक्स योर बॉडी बट कीप योर माइंड अलर्ट। महसूस करें कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं, महान हूं, शक्तिशाली हूं, मैं ईश्वर की बहुत सुंदर रचना हूं, मेरे में कुछ कमी कमियां भी हैं, उसे मैं कम करने का प्रयास करूंगा, मेरे में कुछ विशेषताएं भी हैं, उसे मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा, आई विल वीकन माई वीकनेस एंड स्ट्रेंथन माई स्ट्रेंथ। आज से मैं सत्यता के आधार से जीवन जीऊंगा, सदा खुश रहना, इजी रहना, सिंपल रहना, क्लियर रहना, यही सत्य है। किसी बात का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, स्वतंत्र हूं, कोई बंधन नहीं, क्योंकि मैंने आज एक सत्य को समझा, असफलता या सफलता का कारण मैं, दुख या सुख का कारण मैं, हार या जीत का कारण मेरी सोच, मेरी मान्यताएं, मेरा दृष्टिकोण। हे परमात्मा, हे भाग्य विधाता, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो आज एक सत्य को मैंने समझा कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, आई नीड टू बिकम प्लेजेंट एंड आई विल बिकम गुड। लाइफ इज ब्यूटिफुल। मैं स्वयं के जीवन को और सुंदर और श्रेष्ठ और मीनिंगफुल बनाऊंगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। मेरा मन शांत है, हल्का महसूस कर रहा हूं, जीवन अच्छा नजर आ रहा है, इसे मैं और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करूंगा। मैं सदा मुस्कुराऊंगा और सर्व को खुशियां दूंगा। मैं अपने पति पत्नी बच्चे माता पिता सास ससुर हमारे सीनियर्स जूनियर्स हमारा कार्य क्षेत्र जिस भी सुरक्षा बल से मैं आया हूँ आज से मेरे मन में इन सब के लिए प्यार सम्मान आदेश अनुसार नहीं अपनी इच्छा अनुसार मैं इन्हें प्यार करूंगा बिकॉज आई लाइक इट बिकॉज आई लव इट। मैं उन्हें समझने का प्रयास करूंगा जीवन का अभ्यास करूंगा सकारात्मक चिंतन का अभ्यास करूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है ये सब सोच के। आई एम फुल्ली चार्ज्ड आई कैन फेस एनी चैलेंज ऑफ माई लाइफ विथ पीस एंड हैप्पीनेस एंड राइट नॉलेज। थैंक यू गॉड थैंक यू सो मच। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें उसकी गर्माहट को लेकर आएं, पूरे चेहरे को माथे को आंख को गाल को नाक को मुख को अच्छी तरह रब करें। गुड न्यूज फेयर एंड लवली लगा दिया। सदा फेयर रहना और सदा टू गुड। कुछ भी हो अपने मिठास को नहीं छोड़ना। थैंक यू ओम शांति। Yeah.